तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्तापित श्री राम कथा के चतुर्थ दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। मनुष्य जीवन प्राप्त करके समस्त मनुष्य प्रायः चार कार्यों में लगे रहते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चार कार्य मनुष्य जीवन के चार पुरुषार्थ हैं। ये चार कार्य साधारण पशु नहीं कर सकते हैं, मनुष्य ही इन चार कार्यों के को करने के लिए बना है। इस संसार में जन्म लेते ही संसार में रहने वालों के प्रति कर्तव्य का पालन करता है, जिसे धर्म कहा जाता है, और उस कर्तव्य का पालन करने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है। तब ऑफिस में जाते हैं, बिजनेस करते हैं, काम धंधा करते हैं और पैसे कमाते हैं, और पैसे कमाने के बाद व्यक्ति उस पैसे को इस्तेमाल करने में, काम उपभोग करने में अपना जीवन व्यतीत करता है। और यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो वह मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है। मोक्ष का अर्थ होता है दुखों से मुक्ति, दुखों से मुक्त होने का प्रयास करता है। परंतु भक्तों, संसार में जब तक भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होता है, तब तक हम दुखों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। इस जगत में हमारा सबसे बड़ा दुख ये है कि हमसे वास्तविक प्रेम करने वाला इस जगत में कोई नहीं है। हम सब आत्मा है और आत्मा का यह स्वरूपगत मूलभूत स्वभाव है किसी ना किसी से प्रेम करना। हम सब कुछ छोड़ सकते हैं परंतु प्रेम करना नहीं छोड़ सकते हैं। इस जगत में आप देख सकते हो, केवल मनुष्य की बात नहीं है, ब्रह्मा जी के द्वारा बनी हुई 84 लाख योनि में रहने वाले सभी जीव प्रेम करना जानते हैं। यहां तक ये वृक्ष, पेड़ और पौधे भी प्रेम करना चाहते हैं। प्रेम करना ये जीव का स्वभाव है, और संसार में सब लोग किसी ना किसी से प्रेम करते ही हैं। कुछ लोग अपने शरीर से प्रेम करते हैं, कुछ लोग अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, तो कुछ लोग बच्चों से प्रेम करते हैं, तो कुछ लोग पैसे से प्रेम करते हैं, किसी ना किसी से प्रेम करते हैं। परंतु जब तक यह प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति, भगवान श्री रामचंद्र के प्रति उत्पन्न न हो, तब तक जीव सुखी नहीं हो सकता है। प्रेम करना ये हमारा स्वभाव है, प्रेम करना हम सब लोग जानते हैं, परंतु प्रेम करने के लिए हमें आज तक सुपात्र नहीं मिला है। प्रेम करने के लिए सबसे योग्य पात्र भगवान है। इसलिए यदि प्रेम करना है तो भगवान से, और जिस दिन भगवान से प्रेम हो जाएगा भक्तों, संसार के सभी दुखों से मुक्त होकर परम आनंद में स्थित हो जाएंगे। भक्तों, जब भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, इस संसार के जितने भी भोग, संपत्ति, ऐश्वर्य, ये सब मिट्टी के ढेर लगने लगते हैं। यहां तक भागवत में लिखा है, देहम निजम भारवत, ये शरीर जिसको हम रात दिन भरण पोषण करते हैं, ये शरीर भी भार लगने लगता है जब हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। संसार के ऐश्वर्य, नौकर चाकर, राज रजवाड़े, ये मल उल्टी की तरह दिखने लगते हैं। जैसे राजर्षि भरत के विषय में आया था, मलवत त्याग कर चले गए भगवान के प्रति प्रेम। प्रेम एक ऐसी वस्तु है, और भगवान के साथ यदि प्रेम हो जाए, संसार के सभी वस्तुओं से हम उपराम हो जाएंगे। मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है भगवान के साथ प्रेम करना। और प्रश्न हो सकता है, वह प्रेम उत्पन्न कैसे होगा? भगवान के साथ प्रेम यदि उत्पन्न करना चाहते हैं, तो एक ही सर्वोच्च मार्ग है, वह है भगवान के बारे में सुनना। जब तक हम भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं, तब तक भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। और जैसे ही हम भगवान के विषय में सुनने लगे, सुनते 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 प्रेम उत्पन्न होने लगता है। श्रीमद् भागवत में ज्वलंत प्रमाण, देवी रुक्मणी, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को देखा नहीं था, रुक्मणी ने बहुत सुंदर पत्र भगवान श्री कृष्ण को लिखा कि हे कृष्ण, मेरा भाई जरासंघ मेरा विवाह शिशुपाल के साथ कराना चाहता है, परंतु कृष्ण मैं शिशुपाल के साथ विवाह करना नहीं चाहती हूं। कृष्ण मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं, क्योंकि मैं आपको दिलो जान से प्रेम करती हूं। बहुत सुंदर रुक्मणी ने पत्र में लिखा है कि कृष्ण, आपको मन में प्रश्न होता होगा कि ये रुक्मणी ने मुझे आज तक कभी देखा नहीं, तब इतना प्रेम कैसे हो गया? रुक्मणी ने यहां तक लिख दिया कि हे कृष्ण, यदि आप यहां पर आकर मुझे नहीं लेकर गए, यदि मेरा विवाह आपको छोड़कर अन्य किसी के भी साथ हुआ, तो मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगी। बिना देखे बिना मिले भगवान श्री कृष्ण के साथ रुक्मणी का इतना प्रेम, इस प्रेम का कारण क्या था? तब रुक्मणी लिखती हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, हे भुवन सुंदर, हे कृष्ण, मैंने आज तक आपको देखा नहीं है, परंतु आपके विषय में मैंने बहुत सुना है। नारद मुनि के मुख से, वेद व्यास जी के मुख से, मैंने आपके विषय में बहुत बहुत सुना है, और आपकी कथा सुन सुनकर मुझे आपके प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया है। और हे कृष्ण, कृपया करके आप मुझे यहां से लेकर जाइए। भक्त, ये रुक्मणी ज्वलंत उदाहरण है। मात्र कृष्ण के विषय में सुनकर कृष्ण के प्रति प्रेम हो गया। इसी प्रकार हम भी यदि भगवान के विषय में सुनते रहेंगे, भगवान के प्रति प्रेम हो जाएगा। और इसी बात को रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी इसी बात को कहते हैं, राम चरण रति जो चहे अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा भरो श्रवण पोतका। राम चरण रति जो चहे, भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रेम उत्पन्न करना चाहते हैं और इस जगत के समस्त दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, तो एकमात्र उपाय है, अपने कान के माध्यम से नित्य निरंतर भगवान की कथा सुनते रहो। कथा सुनते सुनते ये प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। परम सौभाग्य है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के आचार्य श्री प्रभुपाद जी की कृपा से भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न कराने वाला यह साधन भगवत कथा का सुअवसर आज हमें इस विरार क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। इसके पीछे एक संत की, एक महात्मा की बहुत बड़ी मेहनत है, नहीं तो ऐसे घोर कलयुग में भगवान की शुद्ध कथा मिलना बहुत मुश्किल है। श्री प्रभुपाद की कृपा से आज हम सब लोग इस भगवत कथा का लाभ ले रहे हैं। आइए श्री प्रभुपाद जी की इस कृपा को हम हृदय में धारण करते हुए इस कथा को आगे बढ़ाए। गत सत्र में आप सब लोगों ने श्रवण किया था किस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र अहल्या का उद्धार करते हुए जनकपुर में पधारे हैं। जनकपुर के राजा भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण और विश्वामित्र का स्वागत करते हैं। उनको रहने के लिए बहुत सुंदर कक्ष व्यवस्था, और जब राम और लक्ष्मण उस अशोक वाटिका में उस फूल के सुंदर बगीचे में फूल चयन करने के लिए जा रहे हैं तो वहां पर देवी सीता का दर्शन होता है। तत्पश्चात बहुत सुंदर किस प्रकार से एक साधक को अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए, किस प्रकार से एक साधक को अपनी निद्रा को वश में रखना चाहिए, भगवान श्री रामचंद्र ने अपने आचरण से बताया। गुरु से पहले जगतपति जागे, गुरु से पहले भगवान जग गए और भगवान से पहले लक्ष्मण जग गए। और आज देवी सीता का स्वयंवर है, विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर उस जनकपुर की गलियों से, जनकपुर के अनेक रहने वाले लोगों के बीच में से पसार होते हुए जा रहे हैं। आज जनकपुर में रहने वाले सब लोग भगवान श्री रामचंद्र को देखकर मंत्र मुग्ध हो रहे हैं। उस समय राजा जनक के दरबार में बहुत सुंदर सभा लग चुकी थी। अनेक राजा महाराजा, इस पृथ्वी के जितने भी छोटे मोटे राजा महाराजा थे, सब लोग वहां पर आकर उपस्थित थे। यहां तक कभी नहीं मरने वाले देवता भी मनुष्य का रूप बनाकर उस सभा में आकर बैठे थे, और यहां तक लंकापति रावण भी देवी सीता के साथ विवाह करने के लिए उस सभा में आकर बैठा था। और सब लोग के मन में एक ही इच्छा थी कि हम इस धनुष को तोड़ेंगे और सीता को लेकर चले जाएंगे। उस समय विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर उस रंग भूमि में आते हैं। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, रंग भूमिया ये दो भाई असि शुद्ध सब पुरवासी न पाई,
रंग भूमिया ये दो भाई असि शुद्ध सब।
रंग भूमि में जब प्रवेश किए, जनकपुर में रहने वाले सब लोग अपने सभी कार्य को छोड़कर भगवान श्री रामचंद्र का दर्शन करने के लिए उस रंग भूमि में आए हैं।
देखी जनक वीर भे भारी शुचि सेवक सब
भगवान श्री रामचंद्र जब उस रंग महल में प्रवेश किए, सब लोग खड़े हो गए और सब लोग अपने अपने स्थान को छोड़कर प्रभु का दर्शन करने के लिए भगवान के पास चले गए। और उस समय वहां पर उस रंग महल में लाखों लोग बैठे थे, हाहाकार मच गया। भगवान का दर्शन करने के लिए सब लोग विवल हो गए। उस समय जनक जी के जो दूत थे, सैनिक थे, सब लोग आए और सबको अपने अपने स्थान पर बिठाया।
राज कुवर ते ही अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए।
राज कुवर ते ही अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए।
गुण सागर ना गर्भ
भगवान श्री रामचंद्र सभा में प्रवेश किए, समस्त प्रकार के गुणों से विभूषित थे। बहुत सुंदर श्याम रंग का शरीर है और लक्ष्मण गौर वर्ण के हैं, और यह दोनों को देखकर सबके मन में मनोहरता छा गई है। सबको हृदय में प्रसन्नता हो रही है, आनंद हो रहा है।
जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी।
जिनके रही भावना जैसी, प्रभु
श्री रामचंद्र जब रंगभूमि में प्रवेश किए तो जिन लोगों की जैसी जैसी भावना थी, उन लोगों ने उन भाव में भगवान का दर्शन किया। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तस्थैव भजाम्यहम्। ये अर्जुन, जो लोग जिस भाव में मेरा भजन करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, उस भाव में उन्हें मेरा दर्शन होता है। भगवान के अंदर समस्त भाव है, भगवान सभी रसों में स्थित है। हम जिस रस में भगवान की भक्ति करते हैं, उस रस में, उस भाव में भगवान हमें दर्शन देते हैं। हजारों लोग बैठे हैं और अलग अलग दृष्टि से, अलग अलग भाव से भगवान को देख रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, उस सभा में महान राजा महाराजा बैठे थे और जितने भी महान राजा महाराजा थे, वे भगवान श्री रामचंद्र को साक्षात वीर रस ही मनुष्य का शरीर धारण करके आया हो, उस स्वरूप में दर्शन किए। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में इसी प्रकार का वर्णन करते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलदेव जी के साथ कंस के उस अखाड़े में प्रवेश करते हैं। वहां कहते हैं, मल्ला नाम अश्नी नृणाम नरवर स्त्रिय स्मर मूर्तिमान। उसी प्रकार भगवान रामचंद्र को भी 10 प्रकार के लोगों ने 10 भाव में देखा। महान महान राजाओं ने साक्षात वीर रस के रूप में भगवान का दर्शन किया, और जो कुटिल राजा थे, जो कुटिल भाव के थे, जिसके मन में दुर्वासना दुर्भावना थी, ऐसे राजा महाराजाओं को भगवान श्री रामचंद्र भयानक मूर्ति के रूप में दिखाई दिए, भयानक स्वरूप दिखाई दिए। और कुछ राक्षस राजाओं का रूप लेकर आए थे, उन राक्षसों को भगवान का स्वरूप काल के रूप में हुआ, साक्षात काल के रूप में। तीन प्रभु प्रकट काल सम देखा, काल के समान उन्होंने भगवान का दर्शन किया। परीक्षित महाराज भागवत के 10वें स्कंद में कहते हैं, अंतर बहिर काल रूपे। यदि कोई व्यक्ति भगवान का भजन करता है तो भगवान उनके अंतर में परमात्मा के रूप में स्थित श्याम सुंदर के रूप में उसे दर्शन देते हैं, और यदि कोई भगवान की भक्ति नहीं करता है तो वही भगवान काल के रूप में उनके सामने उपस्थित हो जाते हैं। तो जो कुटिल राजा थे उन्हें काल के समान दिखे, और जनकपुर के जो नगरवासी थे, जनकपुर में रहने वाले जो लोग थे, उन्हें मनुष्य में श्रेष्ठ निणाम नरवर, नरों में जो श्रेष्ठ है, ऐसे नर ऋषभ श्रेष्ठ मनुष्य के रूप में दिखाई दिए। उस सभा में जो स्त्रियां बैठी थी, उस स्त्रियों को साक्षात भगवान श्री रामचंद्र माधुर्य की मूर्ति के रूप में दिखाई दिए। ये साक्षात हमारे पति हैं, इस रूप में भगवान का दर्शन हुआ। और जो बड़े बड़े विद्वान बैठे थे, वेद शास्त्रों को पढ़कर प्रकांड ज्ञानी जो उस सभा में बैठे थे, उस विद्वानों को विराट रूप में भगवान का दर्शन हुआ। भगवान एक ही है, परंतु अलग अलग लोग भगवान को अलग अलग रूप में देख रहे हैं। तो जो ज्ञानी थे, विद्वान थे, उनको भगवान विराट स्वरूप में दिखाई दिए। अनेक मुख थे, भगवान के मुख से ज्वाला निकल रही थी, भूत भविष्य वर्तमान भगवान के उस स्वरूप में उनका दर्शन हुआ। तत्पश्चात जनक जी के जो संबंधी लोग थे, जनक जी के सजातीय कुटुंबी संबंधी लोग थे, उनको भगवान श्री रामचंद्र अपने होने वाले संबंधी के रूप में दर्शन हुआ। लगता है ये अब हमारे रिलेशन में कुछ होने वाले हैं। और साक्षात जनक जी की जो पत्नियां थी, जनक महाराज और जनक महाराज की जो पत्नी थी, भगवान रामचंद्र जब प्रवेश किए तो अपने बच्चे के रूप में, अपने पुत्र के रूप में भगवान का दर्शन किया कि ये तो हमारा पुत्र है, हमारा बालक है। और जो बड़े बड़े योगी उस सभा में बैठे थे, रात दिन योग करते रहते हैं, अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि में जो लगे रहते हैं, ऐसे योगियों को भगवान परम तत्व के विषय में दिखाई दिए। परम तत्व का अर्थ होता है, तत्व का अर्थ होता है वास्तविक जानकारी। और भगवान के विषय में वास्तविक जानकारी क्या है? वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम्। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये तीनों में परम तत्व है, भगवत तत्व। तो योगियों को परम तत्व के रूप में दिखाई दिए। और उस सभा में कुछ भक्त बैठे थे, भक्तों ने भगवान राम को अपने इष्ट देव के रूप में दर्शन किया कि ये तो हमारे इष्ट हैं, हमारे प्रभु हैं, हमारे स्वामी हैं, जिनकी हम रात दिन उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, भोग चढ़ाते हैं, साक्षात प्रभु ही आज इस रंग महल में प्रवेश कर रहे हैं। इस प्रकार 10 प्रकार के लोगों ने भगवान को अलग अलग स्वरूप में देखा। और सीता ने भी भगवान श्री रामचंद्र को देखा। गोस्वामी जी कहते हैं, सीता ने किस भाव में देखा ये भाव तो मैं भी नहीं जान पाया। अद्भुत भाव सीता का, सीता का स्नेह, और भगवान को देखकर सीता के हृदय में कितना सुख हुआ ये तो शायद सीता और भगवान ही जान सकते हैं। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र उस रंग महल में आए। और राजा जनक अपने स्थान पर खड़े हो गए, खड़े होकर महर्षि विश्वामित्र का स्वागत किए, और स्वागत करते हुए जितने भी राजा महाराजा बैठे थे सभी राजा महाराजाओं के ऊपर के आसन में बिठाया। राजा महाराजाओं से एक आसन ऊपर विश्वामित्र जी को बिठाया, और उनके बाजू में राम और लक्ष्मण को बिठाया। जैसे ही राम लक्ष्मण को ऊपर बिठाया गया, तुरंत नीचे बैठे हुए राजा महाराजा आपस में बात करने लगे। बोले, विश्वामित्र तो ठीक है, परंतु वो दो बच्चे ऊपर क्यों बैठे हैं? उसे हमारे साथ यहां नीचे बैठना चाहिए। राजा जनक पक्षपात कर रहे हैं। तब एक दूसरे आपस में बात कर रहे थे, कहा कि ये लड़के यहां क्यों आए हैं। बोले जानते नहीं हो, ये भी स्वयंवर सभा में भाग लेने के लिए आए हैं। बोले ये बच्चे भाग लेंगे, ये कल के दूध पीते बच्चे हैं, ये शिव धनुष तोड़ेंगे। सब लोग हंसने लगे, उपहास करने लगे। इस प्रकार सारी सभा लग चुकी है, सैकड़ों लोग उस धनुष को तोड़ने के लिए बैठे हैं और लाखों लोग इस दृश्य को देखने के लिए उस स्टेडियम में बैठे हैं। और उस समय राजा जनक ने बंदी जन को बुलाया, चारण भाट इत्यादि आए और उन्होंने सबसे पहले राजा जनक का जो प्रण था वह प्रण बताया।
बोले बंदी बचन नबर, सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम, भुजा उठाई विशाल।
बंदीगण बोलने लगे कि हे राजा महाराजाओं, आप सबको यहां पर क्यों बुलाया गया है। आप सबको यहां पर इसलिए बुलाया गया है ताकि आप सब बहुत शक्तिशाली हो और जनक जी का प्रण है ये शिव जी का धनुष, आप में से जो कोई तोड़ेगा उसका विवाह वैदेही के साथ जनक दुलारी जनक लाडली सीता के साथ कराया जाएगा। राजा जनक का ये प्रण था, मैंने कल आपको बताया। और ये बंदी जन बहुत सुंदर, सभी राजा महाराजाओं की प्रशंसा करने लगे। ये शिव धनुष परम पराक्रमी है, ये शिव धनुष विशाल है, यह धनुष राहु की समान है और हे राजा महाराजाओं, आपका तेज ताराओं के समान है, चंद्रमा के समान आपका तेज है। बंदी जन ने जब कहा राजा महाराजाओं को कि आप आकाश के ताराओं के समान चमक रहे हो, तब तो सारे राजा महाराजा अपना कॉलर ऊपर करने लगे, वाह ये भी हमारे बारे में जानता है। राजा महाराजाओं के अंदर वीर रस आ गया। बंदी जन ने कहा कि आप सब लोग, ये धनुष राहु के समान है और आप सब लोग तारे के समान चमक रहे हो। और सब राजा महाराजा ऊपर हो गए, अपना कॉलर चढ़ाने लगे। परंतु वह राजा महाराजा यह नहीं जानते थे, तारों का अपना तेज नहीं होता है। आकाश में जो तारे होते हैं उनका अपना तेज नहीं होता है, वो तो सूर्य से चमक लेकर चमकते हैं। ये जितने भी राजा महाराजा इसलिए चमक रहे थे क्योंकि सभी राजा महाराजाओं के बीच में रघुकुल भूषण भगवान श्री रामचंद्र बैठे थे।
नृप भुज बलु विदु शिव धनु राहु, करौ कठोर विदित सब काहु।
नृप भुज बलु विदु शिव धनु राहु, करौ कठोर विदित सब
काहु। धनुष राहु के समान है और आपकी शक्ति चंद्रमा के समान है।
रावणु बानु महाभट बारे, देखि सरासन गवहि सिधारे।
रावणु बानु महाभट बारे, देखि सरासन गवहि सिधारे।
इस सभा में जो व्यक्ति खड़ा होकर इस धनुष को तोड़ेगा उसके गले में यह वैदेही हार पहनाएगी, वैदेही उनको चुन लेगी, उनके साथ सीता का विवाह होगा। सब लोग के मन में उत्साह बढ़ा, सब लोग प्रशंसित हो गए और अब यह विचारने लगे मेरी बारी कब आए, मेरी बारी कब आए। समस्त राजा महाराजा मन ही मन गणेश जी को प्रार्थना करने लगे, हे गणेश जी कृपया करके आप मुझे शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं इस धनुष को तोड़ डालूं। यदि मेरे हाथ से यह धनुष टूटा तो मैं आपको 10 लड्डू चढ़ाऊंगा। दूसरा राजा अपने मन में सोचता था, यदि मेरे से यह धनुष टूटा मैं आपको 100 लड्डू चढ़ाऊंगा। साथ ही साथ गणेश जी के ऊपर विश्वास भी नहीं होता था कि हे गणेश जी, यदि मेरे से धनुष नहीं टूटा तो आपसे प्रार्थना करता हूं और किसी से न टूटे। एक दूसरों के बीच में ईर्ष्या करने लगे, द्वेष करने लगे। इस जगत में जो व्यक्ति दूसरों को गिराना चाहता है, दूसरों से ईर्ष्या करता है, वह कभी भी विजयी नहीं हो सकता। धीरे धीरे सभी राजा महाराजा, एक से एक राजा महाराजा खड़े हुए, अपनी मूछ पर हाथ घुमाते हुए, अपने बाहु का बल दिखाते हुए राजा धीरे धीरे खड़े होते थे, धनुष के पास जाते थे। और धनुष के पास जाकर लगता था कि अभी आसानी से धनुष को उठा लेंगे, परंतु जैसे ही धनुष को छूते थे, धनुष को छूकर ही गिर जाते थे। बहुत बहुत प्रयास करने पर भी वह धनुष उठता नहीं था। दूसरा राजा आया, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, अनेक राजा महाराजा वहां पर आए। जब किसी राजा महाराजे से वह धनुष नहीं हिला, तब एक साथ दो दो राजा महाराजा आने लगे। दोनों राजा आपस में मिलकर 50-50% का हिस्सा बांटेंगे, पार्टनरशिप करके आने लगे। लेकिन दो राजा महाराजा मिलकर भी उस धनुष को नहीं हिला पाए, तब ये दो नहीं, एक साथ 10-10 राजा महाराजा, लेकिन फिर भी वह धनुष हिला नहीं। यहां तक दशानन रावण, जिनके विषय में गोस्वामी कहते हैं, चलत दशानन डोलती अवनी, जब रावण अपने घर से चलता था, पूरी पृथ्वी कांपने लगती थी। यह परम पराक्रमी रावण भी जब उस धनुष को उठाने आया, नहीं उठा पाया। अनेक लोग आए, 10-10, 50-50, 100-100 लोग साथ में मिलकर धनुष को उठाना चाहे, परंतु धनुष उठाने की बात तो दूर रही, धनुष हिला तक नहीं।
भूप सहस दस कही बारा, लगे उठावन तरही तारा।
भूप सहस दस कही बारा, लगे उठावन तरही तारा।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, एक साथ 1000 राजा मिलकर खड़े हुए। 1000 राजा खड़े होकर उस धनुष को हिलाने के लिए गए, परंतु तील भार भी वह धनुष नहीं हिला।
दगई न संभुसरासन कैसे, काम वचन बिन सति मन जैसे।
दगई न संभुसरासन कैसे, काम वचन सति मन जैसे।
जैसे कामियों के अच्छे अच्छे वचन से सती नारी कभी डगती नहीं है, अपने पद से कभी विचलित नहीं होती है, जैसे कामियों के वचन का सती के ऊपर कोई असर नहीं होता है, वैसे हजारों हजारों राजा महाराजाओं की शक्ति इस धनुष पर कोई असर नहीं कर रही है। अनेक राजा महाराजा आपस में मिलकर उस धनुष को उठाना चाहे, और एक साथ जब 10000 राजा उठकर उस धनुष को पकड़ने गए, उस समय जनक जी बोले, बस
बहुत हुआ, अब ज्यादा उपहास न हो तो अच्छा है। मैंने सोचा था इस सभा में बड़े बड़े पराक्रमी आए हैं, मैंने ऐसा सोचा था इस सभा में चक्रवर्ती सम्राट आए हैं, परंतु यहां तो एक भी वीर नहीं है। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जोपन उठाना। देश देश और विदेश से अनेक राजा महाराजाओं को यहां पर बुलाया गया, और मुझे ये भी पता है, देव धनुज धरी मनुज शरीरा, इस सभा में बड़े बड़े देवता भी मनुष्य का रूप लेकर बैठे हैं, परंतु इस धनुष को उठाकर इन पर चाप चढ़ाने की बात तो दूर रही, इस धनुष को तल भार भी हिला नहीं सके। मुझे बोलते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मैंने सोचा था कि इस दुनिया में बड़े बड़े एक से एक वीर हैं, एक से एक पराक्रमी हैं, परंतु आज पता चला, विपुल वीर आये रण धीरा। परंतु मुझे आज पता चला कि यहां पर एक भी व्यक्ति पराक्रमी नहीं है। लगता है मेरी पुत्री के योग्य वर ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं है। जब से परशुराम ने क्षत्रियों का विनाश किया है,
लगता है उस समय से कोई वीर क्षत्रिय इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लिया है। अब आप सब लोग अपने अपने घर पर वापस जाइए, आप लोगों की सभा में जरूरत नहीं है। तजहु आस निज निज गृह जाऊं। जनक जी ने अपमान कर दिया सभी राजाओं का, जाओ चले जाओ। लिखान विधि वे देही विवाह, मेरी कन्या के नसीब में विवाह नहीं लिखा है, आप सब लोग अपने अपने घर पर चले जाओ। जनक जी ने कह दिया सब लोग चले जाओ, लेकिन एक भी राजा उठा नहीं। बेशरम थे राजा, एक भी उठा नहीं। बोले नहीं उठने का कारण, जब जनक जी ने बुलाया और जनक जी ने ही कह दिया कि तजहु आस निज निज घर जाऊं, सब लोग अपने अपने घर पर वापस चले जाओ, तब राजाओं को खड़े होकर चले जाना चाहिए। राजा गए नहीं, एक दूसरे को इशारा करने लगे, क्या करना है, ये बोल रहे हैं चले जाओ। बोले बैठो बैठो, देखते हैं कौन तोड़ने वाला है। बोले सब लोग अपने जैसे ही तो हैं। राजा लोग इसलिए नहीं गए, उन्होंने मन में सोचा कि यहां पर धनुष को तोड़ने वाला तो कोई है नहीं, अब हो सकता है आगे चलकर जनक जी कहे कि बेटा अब धनुष तो टूटने वाला है नहीं, आप अपने गले में आप अपने हाथ में माला ले लो, और माला लेकर आपको जो अच्छा लगे उनके गले में माला डाल दो, शायद अपना नंबर लग जाए। यह सोचकर राजा महाराजा बैठे रहे कि शायद हमारा बोनस स्टेज में नंबर लग जाए। परंतु जनक जी ने बहुत कठोर वचन कहे कि मैंने सोचा था कि इस संसार में बहुत वीर हैं, वीर विहीन मही में जानी, इस संसार में एक भी वीर नहीं बचा है, यह धरती वीरों से खाली हो गई है, इस धरती पर कोई वीर नहीं है। जनक जी जब ऐसा बोले, अनंत शेष के अवतार लखन जी से नहीं रहा गया। लखन जी ने मन में सोचा अब तो हद हो गई, जब जनक जी ने कहा वीर विहीन मही में जानी, इस पृथ्वी में एक भी वीर नहीं बचा है, तब लक्ष्मण जी खड़े होकर बस महाराज बस, आपने बहुत बोल दिया। अरे जिस सभा में रघुवंश के एक दिन का बालक भी बैठा हो, उस सभा में ऐसे वचन बोलने की कोई हिम्मत नहीं करता है, और इस सभा में तो साक्षात रघुकुल दीपक राम बैठे हैं, और आप ऐसा कह रहे हो कि यहां पर वीर नहीं है। लक्ष्मण क्रोधित हो गए, जैसे सर्प की पूंछ पर किसी का पांव हो जाए और फफड़ा कर सर्प खड़ा हो जाए, वैसे लक्ष्मण जी खड़े हो गए। रघुवंशी में से कोई एक भी बेटा हो उस सभा में ऐसे बोलने की कोई हिम्मत नहीं करता है। और ये शिव धनुष तो बहुत दूर की चीज है, यदि मेरे प्रभु राम यदि मुझे आज्ञा दे, शिव धनुष तो क्या चीज है, पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। यदि मेरे भाई मुझे आज्ञा दे, उस ब्रह्मांड को ऐसे पटकूं कि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए। यदि मेरे भाई मुझे आज्ञा दे, तो सुमेरी पर्वत को मूली की तरह उखाड़ लूं। यदि मेरे भाई मुझे आज्ञा दे, इस शिव धनुष को उठाने की बात तो दूर रही, इसे उठाकर 100 योजन तक दौड़कर चला जाऊं। यदि मेरे भाई मुझे आज्ञा दे, तो जैसे छोटे छोटे बालक बरसाती छाते को उठा लेते हैं, वैसे खेल खेल में शिव धनुष को उठा लूं। इस प्रकार से लक्ष्मण जी क्रोधमय वचन बोलने लगे। तब जनक जी ने सोचा लगता है जरूरत से थोड़ा ज्यादा बोल गया। लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण जी जब इस प्रकार से क्रोधमय शब्द बोले, दिग्गज डोलने लगे, सब कुछ कांपने लगा, सब लोग हिलने लगे। वहां बैठे हुए जितने भी राजा महाराजा थे, सब लोग डोलने लगे, दिग्गज डोलने लगे, सारी प्रजा डोलने लगी, जनक भी डोलने लगे, सब लोग डोलने लगे, दो लोग नहीं डोले, धनुष और भगवान राम। ये दोनों ऐसे ही आराम से शांत बैठे थे। लक्ष्मण ने कहा प्रभु आप चुप क्यों हैं? मैं इतना क्रोधित हो रहा हूं, मैं इतना लाल लाल हो रहा हूं, और आप ऐसे शांत बैठे हैं। तब भगवान ने इशारा करते हुए लखन को कहा, लखन सूर्य जब उदय होता है ना तब पहले लालिमा आती है ना, आपने देखा होगा सुबह जब सूर्य का उदय होता है तो सबसे पहले लाल प्रकाश होता है, लालिमा आती है और फिर सूर्य आता है। लखन लालिमा आ चुकी है, अब सूर्य आने की देरी नहीं है, राह देखो थोड़ी ही देर में सूर्य आएगा और तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। भगवान राम का इशारा होते ही लखन लाल अपनी जगह पर बैठ गए। योग्य समय देखकर विश्वामित्र जी भगवान श्री रामचंद्र को इशारा करते हैं, उठहु राम बन जाऊं भव चापा। हे राम आप उठिए, खड़े होइए, मेट हूं तात जनक परितापा। जनक महाराज की जो तपस्या है उस तपस्या को आज आप समाप्त कीजिए। विश्वामित्र ने भगवान श्री रामचंद्र को आज्ञा दी। यहां पर एक बहुत बड़ा सिद्धांत स्थापित होता है भक्तों, क्या भगवान नहीं जानते थे कि यह धनुष मैं तोड़ने वाला हूं? जब बंदी गणों ने कहा कि हे राजा महाराजाओं अब लाइन से आप सब लोग आने लगो, तो सबसे पहले प्रभु राम ही बैठे थे, परंतु भगवान जानते थे कि यह धनुष मैं तोड़ने वाला हूं, मेरे में समर्थता है, मुझ में शक्ति है। ये सब कुछ जानते हुए भी भगवान राम ने उस धनुष को नहीं तोड़ा जब तक उनके गुरु की आज्ञा नहीं हुई। विश्वामित्र कह रहे हैं कि हे राम अब आप उठो और चलो, और जब विश्वामित्र ने कहा तब भगवान राम उठे हैं। बहुत सुंदर, भगवान राम अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि जीवन में जब तक गुरु की आज्ञा न हो तब तक कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। यदि भले समर्थता हो, सामर्थ्य हो, शक्ति हो, हमारे पास कितनी भी अच्छी सामर्थ्यता हो, परंतु गुरुदेव का आशीर्वाद न हो, कृपा न हो, उनका आदेश न हो, तब तक कार्य नहीं करना चाहिए। महाभारत के प्रसंग में आप सब लोग जानते हैं, जब कौरव और पांडवों में युद्ध छिड़ गया, दोनों पक्ष आमने सामने महाभारत के उस कुरुक्षेत्र की भूमि में खड़े हैं और दोनों युद्ध की पूरी पूरी तैयारी में हैं, अस्त्र शस्त्र सज धज कर आए हैं, एक दूसरे को मारने की तैयारी है, परंतु उस समय युधिष्ठिर महाराज अपने रथ से नीचे उतर गए। जहां युद्ध प्रारंभ करना था, युद्ध प्रारंभ करने के बदले युधिष्ठिर महाराज नीचे उतर गए। बड़े भाई को रथ से नीचे उतर कर देखकर भीम भी उतर गए। भीम को देखकर अर्जुन उतरे, नकुल, सहदेव, पांचों भाई नीचे उतरे और युधिष्ठिर महाराज के पीछे चारों भाई चल रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज सबसे पहले पितामह भीष्म के चरणों में गए, पितामह भीष्म को प्रणाम किया, दंडवत किया कि हे प्रभु, दादाजी हम आपके पास आए हैं, हमें आपके साथ युद्ध करना है, आपसे आदेश लेने आए हैं, आप आदेश दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। और इसी प्रकार द्रोणाचार्य के पास गए और उनसे आदेश और आशीर्वाद लिया। महाभारत में वेद व्यास जी लिखते हैं, ये द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म चाहते तो उस महाभारत के पहले दिन के युद्ध में ही रिजल्ट आ गया होता, पहले ही दिन पांडवों का वध हो गया होता। पितामह भीष्म महारथी थे, परंतु युधिष्ठिर महाराज ने प्रणाम किया तब पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य ने आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव, विजयी भव, और मन ही मन कह दिया, अच्छा हुआ अर्जुन, अच्छा हुआ महाराज युधिष्ठिर आप हमारे पास आ गए और हमारा आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। इस प्रकार गुरुजनों के आशीर्वाद और निर्देश के अंतर्गत यदि हम कार्य करते हैं तो जीवन में सफल होते हैं। भगवान श्री रामचंद्र को आज आशीर्वाद मिला है। विश्वामित्र कह रहे हैं, उठहु राम भंजउ भव चापा, मेटहु तात
जनक परितापा
उठो राम भजहु भव चापा मेटहु तात जनक परितापा।
मित्र कह रहे हैं
उठो राम भजहु भव चापा मेटहु तात जनक परितापा
उठो राम भजहु भव चापा।
उठिए राम और उठकर जनक जी की प्रतीक्षा को तोड़
उदित उदय गिरि मंच पर रघुकुल बाल पतन
उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतन
उदित उदय गिरि मंच पर रघुकुल बाल पतन
उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतन।
विश्वामित्र के कहने पर भगवान श्री रामचंद्र अपने स्थान से खड़े हुए हैं। भगवान श्री रामचंद्र अपने स्थान पर खड़े हुए तो कैसे लग रहे हैं? गोस्वामी जी कहते हैं जैसे आकाश में पहाड़ों के पीछे से सूर्य प्रकट होता है, सूर्य खड़ा होता है, वैसे भगवान श्री रामचंद्र छोटे से सूर्य के समान खड़े हुए हैं।
उदित उदय गिरि मंच पर रघुकुल बाल पतन
उदित उदय गिरि मंच पर रघुकुल बाल पतन
विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भिन्न
विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भिन्न।
जैसे सूर्य उदय होता है और इस संसार में जितने भी वृक्ष होते हैं वनस्पति होते हैं वे हर्षित हो जाती हैं। सूर्य का उदय होते ही इस संसार के जो साधु ऋषि मुनि होते हैं वो परम प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान श्री रामचंद्र जब अपने स्थान पर खड़े हुए हैं उस धनुष को तोड़ने के लिए उस समय उस सभा में बैठे हुए समस्त प्रजा राजा जनक देवी सीता ये समस्त लोग परम प्रसन्न हो गए। भगवान रामचंद्र धीरे 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 धनुष की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मृगराज जैसे केसरी सिंह पर्वत की कंदराओं से निकलकर अपने शिकार को ढूंढने के लिए चलता है वैसे भगवान श्री रामचंद्र अपने स्थान से उस धनुष की ओर जा रहे हैं। सब लोग के मन में एक ही भावना हो रही है अब क्या होगा। जनक जी की पत्नी सुनैना सोच रही है कि अब ये उपहास बहुत हो रहा है, ये बड़े बड़े राजा महाराजा सैकड़ों राजा मिलकर इस धनुष को नहीं तोड़ पाए तो ये छोटा सा बालक इस धनुष को कैसे तोड़ेगा। सबके हृदय में ये चिंता है इससे धनुष टूटेगा नहीं टूटेगा और सबसे ज्यादा चिंता तो देवी सीता के हृदय में है। देवी सीता मना रही है समस्त देवताओं को, भगवान से प्रार्थना कर रही है प्रभु प्रभु आज यदि यह धनुष नहीं टूटा तो यह सीता कुंवारी रह जाएगी, आज यह धनुष टूटना है। सब लोग अपने हृदय में भगवान की याद कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आइए हम भी पुकारते हैं भगवान को आप इस धनुष को तोड़िए।
राजा राम राम हरे राम 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 राम
हरे राम 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 सीता राम राम राम
हरे राम 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 राम
हरे राम 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 सीता राम राम
हरे राम राम राम
हरे राम 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 सीता राम राम राम।
भगवान श्री रामचंद्र धीरे 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 उस धनुष के पास जा रहे हैं।
धीरे धीरे उस धनुष की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जितने धनुष के पास जा रहे हैं उतने सबके हृदय के दबकारे बढ़ रहे हैं। सब लोग के हृदय में शोभ हो रहा है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, और सब लोग भगवान को पुकार रहे हैं।
हरे राम 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 सीता राम राम राम,
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 हरे राम 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 सीता राम राम।
चंद्र चलते चलते धनुष के पास पहुंच गए और धनुष के पास पहुंचकर सबको देख रहे हैं। सबकी दृष्टि धनुष के ऊपर है। आज सैकड़ों लोगों की, हजारों लोगों की दृष्टि धनुष के ऊपर लगी है। भगवान श्री रामचंद्र ने सबकी ओर दृष्टि की। अंत में भगवान राम की दृष्टि जब सीता के ऊपर गई, सीता जी को व्याकुल पाया, हृदय में क्षोभ है, व्याकुलता है। सीता की व्याकुलता को दूर करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र धनुष की ओर गए और एक दृष्टि में भगवान ने धनुष को देखा है। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे गरुड़ सर्प को पकड़ने के लिए सर्प को देखता है, वैसे भगवान राम ने उस धनुष को देख लिया। माता पिता गुरु वशिष्ठ को याद किया, विश्वामित्र को मनी मन प्रणाम किया, विश्वामित्र ने आशीर्वाद दिया, सभा में शांत वातावरण हुआ, हजारों के नेत्र धनुष के ऊपर है। और उस समय लखनलाल अपने स्थान पर बैठे हैं, देखा प्रभु धनुष तोड़ने के लिए जा रहे हैं। लखनलाल अपने दोनों पांव से पृथ्वी को दबा लिए। विश्वामित्र ने कहा तुम इतने हिल क्यों रहे हो? लखन जी कहते हैं प्रभु धनुष टूटेगा, बहुत बड़ी ध्वनि होगी, भयंकर आवाज होगी, मैं अपने पांव के द्वारा दिग्गजों को दबा कर रख रहा हूँ ताकि पृथ्वी डोल न जाए, कांप न जाए, गिर न। लक्ष्मण जी ने अपने दोनों पांव से पृथ्वी को दबा लिया और उस समय भगवान श्री रामचंद्र धनुष को देख रहे हैं और धनुष को उठाने के लिए भगवान राम अपने हाथ को आगे कर रहे हैं। जैसे ही भगवान राम ने धनुष को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे किया, अचानक धनुष का एक छोर खड़ा हो गया, धनुष को स्पर्श नहीं किया। भगवान का हाथ आगे होते ही धनुष एक बाजू से खड़ा हुआ और धनुष खड़ा होते ही प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ, अनंत कोटि प्रकाश उत्पन्न हुआ। सबकी आंखें बंद हो गई, सबको समझ नहीं आया क्या हुआ। भगवान को नहीं देख पाए, धनुष को नहीं देख पाए, लक्ष्मण को नहीं देख पाए। उसी समय भगवान राम ने उस धनुष को उठाया, उठाकर पतंजलि चढ़ाने गए, उसी समय धनुष के दो टुकड़े हो गए। धनुष के दो टुकड़े हुए और भयंकर आवाज हुई। गोस्वामी जी कहते हैं ही छन राम मध्य धन तोरा, हरे भुवन धुनि ढोर कठोरा। भगवान श्री रामचंद्र ने धनुष तोड़ा, धनुष टूटने की आवाज तीनों लोक में चली गई। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं धनुष टूटते ही भयंकर आवाज हुआ। सूर्य पूर्व की ओर जा रहा था, पश्चिम की ओर मुड़ गया, नदियों ने दिशा बदल दी, धरती डोलने लगी, शेष वरा इत्यादि कच्छप विकाल होने लगे, दिग्पाल चक्कर काटने लगे, समुद्र का पानी उछलने लगा, पर्वतों के शिखर गिरने लगे, विंध्याचल और हिमाचल की तलेटी में महात्माओं के ध्यान भंग हो गए, दिग्गज चक्कर काटने लगे, अप्सराओं का नित्य बंद हो गया। भयंकर शिव धनुष टूटते ही सीता जी का वियोग टूटा, जनक और सुनैना की शंका टूटी, नगर वासियों की चिंता टूटी, मंदोदरी की चूड़ी टूटी और सीता जी ने वो वरमाला भगवान श्री रामचंद्र के गले में डाल दी। बोले श्री रामचंद्र भगवान की
जय,
श्री रामचंद्र भगवान की
जय,
श्री रामचंद्र भगवान की
जय।
लक्ष्मण जी गए जनक जी के पास, आप कह रहे थे ना इस सभा में कोई वीर नहीं है, यदि दूसरा धनुष है तो मुझे दो, मैं तोड़ देता हूँ।
इस प्रकार सीता जी ने भगवान श्री रामचंद्र के गले में माला डाली, बहुत सुंदर स्वयंवर सभा हुई, राम और सीता का विवाह हुआ। आइए हम भी 2 मिनट राम और सीता के विवाह में भाग ले लेते हैं।
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम।
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम।
राजा राम 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 पतित पावन सीता राम।
पतित पावन सीता राम।
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम।
सीता राम सीता राम सीता
राम। भाइयों सभी लोग प्रेम से
सीता राम
सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम।
बोलो सीता राम जय
रामचंद्र का विवाह हुआ है, सब लोग प्रेम से नारा।
राम जय सीता राम सीता राम जय सीता राम।
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम।
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम।
सीता राम
सीता राम
सीता राम जय सीता राम।
सीताराम
बोलो रघुपति
राजा राम पति पावन सीताराम
रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम
रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम
रघुपति राघव राजा राम पति पावन
राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम
सीता राम 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 सीता राम राम राम
सीता राम राम राम
सीता राम राम
भगवान श्री रामचंद्र का विवाह देवी सीता के साथ तय हुआ।